نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے آج کا سیشن شروع کریں گے کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جو فرشتوں کے نزول کے راستے میں رکاوٹ بنے ابھی تک ہم نے 6 چیزیں پڑھیں اب ہم چلیں گے 7ویں چیز پہ اور وہ کیا ہے استقامت اختیار کرنا ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہے یہ بات قرآن پاک میں ہے حامیم سجدہ سورت آیت 30 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو اس آیت کریمہ میں استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا کڑے اور مشکل ترین حالات میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا اور اس سے انحراف نہ کرنا یہی استقامت ہے امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا اس کو 1 لکھ لیجئے پوائنٹ اے لکھ لیں یا 1 لکھ لیں کچھ بھی یعنی یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے پھر اس کی اطاعت پر قائم رہنا اس کے علاوہ سب سے اعراض کرنا یعنی 3 نمبر ہو گئے اور اسی سے تعلق جوڑنا 4 دنیا سے بے رغبت ہو جانا 5 اور 6 آخرت میں رغبت کرنا اور 7واں نمبر ہے کلمہ شہادت پر مرتے دم تک قائم رہنا یہ ہے استقامت جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اب تو فکر لگ گئی ہے بہت سارے لوگ نیکی کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ سٹیپس ہیں اس کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھ لیں کہ اللہ کو ماننا پہلا درجہ اس ماننے کا اظہار کرنا یہ اس سے اگلا درجہ پھر اس اظہار پہ جم جانا یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے بہت سارے لوگ اللہ کو ایک مان لیتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے جیسے ایک بادشاہ بھی ایسا تھا جس نے اپنی رعایت کے چھننے کے ڈر سے اظہار سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تھا ہرقل اس کا نام تھا کچھ لوگ ہیں جو ہم جیسے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اظہار بھی کرتے ہیں مذہب کے خانے میں مسلمان لفظ بھی لکھ دیا جاتا ہے کان میں اذان بھی دے دی جاتی ہے لیکن اس اظہار پر جم نہیں پاتے میں نے بہت شروع کے سفر میں اسی آیتوں پہ علامہ احسان علی ظہیر تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے بعد میں شہادت کا درجہ پایا اللہ تعالیٰ ان کے درجے اچھے کرے میں نے سب سے پہلے یہ آیت ان کی زبان سے سنی اور جو ان کا ایک سٹائل تھا جو کبھی سنا ہوگا ان کو آپ جانتے ہیں وہ ڈائس کانپتا تھا ممبر کانپتا تھا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے خون کو گرم کرنے والا ان کا انداز تھا تو وہ ان کے لفظ آج بھی میرے دل میں میری آنکھوں میرے کانوں میرے دماغ میں گونجتے ہیں کہ اللہ کو ماننا یہ پہلا درجہ اللہ کو مان کر اس کا اظہار ہی کر دو ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کی باتیں بھی مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے لیکن اظہار نہیں کرتے نہیں لوگ پھر ہمیں مولوی سمجھیں گے لوگ پھر ہمیں کہیں گے بہت دیندار ہو گئی ہے کچھ اس کو کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہے دین ٹھیک ہے ہمیں پتہ اچھی بات ہے اللہ نے جن باتوں کو حکم دیا وہ اچھا ہے لیکن سب سے مشکل کام کیا ہے کہ جب اس اظہار کے اوپر عمل کا موقع آتا ہے اور اس پہ استقامت آتی ہے کہا یہاں اس تیسری سیڑھی سے اکثر پھسل جاتے ہیں الا ماشاء اللہ ہم کہاں نہیں جمتے جہاں ہماری کوئی خواہش پہ چوٹ پڑتی ہے ہم کہاں نہیں جمتے یا ہم کہاں سے پھسلتے ہیں جہاں ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں ہمارے قدم کہاں لڑکھڑانے لگتے ہیں جہاں ہم اپنے سوسائٹی میں پہلے ہی ہوں ون ہوں اپنی ساری دوستوں میں میں پہلی ہوں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا یہ صورت ہوتی ہے ہم پیئر پریشر میں آ کر استقامت چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگوں کی پسندیدگی کا گراف نہ کم ہو جائے میری پاپولیرٹی کا معیار کم نہ ہو جائے اس پہ بہت سارے لوگ استقامت کی سیڑھی سے نیچے جاتے ہیں میں ایسے اس کو سوچتی ہوں کہ سیڑھی ہیں اور ایک شخص نیچے تھا اور اب اس کو اوپر جانا ہے پہلے پہ چلا جاتا ہے تھوڑا دوسرے پہ تیسرے پہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پھر اوپر جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہتا نہیں یہ بہت اونچا ہے حالانکہ آپ دیکھیے کہ بلندی تو اوپر ہے نا پھر آپ اس کو اس طرح بھی امیجن کیجئے کہ اگر آپ میں استقامت نہ ہوتی آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کے جی میں داخل کروایا پھر پریپ 1 پریپ 2 फिर पहली दूसरी तीसरी करके मैट्रिक पहुंचे, मैट्रिक से एफएससी किया होगा, एफएससी से आपने मेडिकल किया, मेडिकल से आगे आपने हाउस जॉब की, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की, या जिसने कुछ और किया, आप आज क्या हैं? ये आपकी इस्तकामत का नतीजा है। क्या ऐसा बच्चा जिसको पेरेंट्स पकड़ पकड़ के स्कूल में ले जा रो धो के वो प्रेप कर ले या मैट्रिक भी कर ले, कल कोई उसको डिग्री देता है? बस इस मिसाल को पल्ले से बांध ले। एक और वजह जब लोग इस्तकामत नहीं करते, ये तो दिल की तख्तियों पे लिख लें जुमले, आपको मेरी बातें याद रहेंगी मैं रहूँ ना रहूँ। वो कहते हैं ना, वो याद भी आ गया कल का सबक। चलिए रोक के पूछती हूँ, कल एक आपको आयत दी थी ढूंढने को, उफ़ उमरी लल्ला, पहले बताएं किस किस ने कोशिश की? नतायज अल्लाह नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछूँगी, कोशिश किस किस ने की? तो बस जिस इसने कोशिश की वो कामयाब है, मुबारक हो, आप विनर हैं। सही नतीजे पे पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन ये सूरत मोमिन की आयत है, आयत नंबर 44। मर्द मोमिन, जब उसने लोगों के साथ इखलास का मामला किया लेकिन लोगों ने उसकी बात ना मानी और उसके ऊपर झपट पड़े और उस पर इल्ज़ाम लगाए, तो क्या कहा? कहने लगा उफ़्विज़ अम्री इलल्लाह, और उससे पहले एक जुमला बोलता है, फ़सतज़्कुरूना मा अक़ूलु, एक वक्त आएगा तो मेरी बातें याद करोगे लेकिन मैं उस वक़्त होऊंगा नहीं। फ़सतज़्कुरून, तो यही बात इस वक्त मैं आपको कह रही हूँ। अभी मेरी इस बात को इसी मर्द मोमिन की बात से ही रिलेट करके लिख लें कि रमज़ान में हमने जितनी नेकियों की नीयत की है, जो अच्छे कामों के इरादे किए हैं, उस पे इस्तकामत का एक ही तरीका है कि इल्म का ये पानी आपको मिलता रहे। इल्ला माशाल्लाह, इस्तकामत कब नहीं रहती? जब पीछे से फ्यूल मिलना छूट जाता है। मसलन आपकी गाड़ी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, यहाँ से निकले आप अर्गन जाने के लिए, रास्ते में कहीं आके रुक गई, भाई हुआ क्या? ठीक थी, चलती है, वो देखो ढूंढो, मुश्किल पता चला, पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी ठीक है। अच्छा, हम ख़राब नहीं होते? लोग जो नेकियाँ नहीं आज कर रहे हैं ना कहीं भी भाग के, वो ख़राब नहीं है, पेट्रोल नहीं पड़ रहा। अच्छा, कई दफ़ा पेट्रोल होता है, कचरा आ जाता है अंदर, सुना होगा आपने। इसी तरह इल्म ले रहे होते हैं, शक आ जाता है दिल में। फिर इसी तरह आप देखिए, कभी पेट्रोल भी सब ठीक होता है तो वो जो मोबिल ऑयल होता है गाड़ी का, वो ख़राब हो चुका होता है, वो डर्टी हो चुका है, वो कंजस्टेड है, वो थिक हो चुका है, धक्के मार मार के गाड़ी को चलाते हैं और कुछ भी नहीं होता ना, तो बैटरी ख़राब होती है। हमारी ज़िंदगी में, हमारे इंसानों के वजूद में ये सारा कुछ है। इल्म आपका मेरा पानी है, पेट्रोल कह लीजिए, गैस कह लीजिए, अमेरिका में लोग पेट्रोल का असल में गैस कहते हैं, इसलिए मैं गैस बोलती हूँ तो मुझे हमेशा वो याद आता है, आप उसको पेट्रोल कह लीजिए, नो प्रॉब्लम, जो भी यहाँ का नाम है या जो भी जिस मुल्क में लेते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिए, अगर गाड़ी में पेट्रोल डलता रहेगा, उसकी डेली तौर पर क्लिनजिंग होती रहेगी, गाड़ी की बैटरी पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालेंगे, तो आप इंशाल्लाह इस्तकामत के इन आला दर्जों पर पहुँच जाएंगे, जहाँ आप मास्टर्स करने के लिए पहुँचे, जहाँ आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिली। आप में जितनी सिस्टर्स कहीं ना कहीं पहुँच चुकी हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड उनका है ना लाइफ में, जो पढ़ना था पढ़ लिया, क्यों पहुँचे? इस्तकामत थी। मैं और आप दीन के काम पे चलते हैं, अल्लाह के रस्तों में निकलते हैं, अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं, ये डिग्री किस दिन मिलती है? आपको तो मिल गई मेडिकल की डिग्री 25 साल की उम्र में मिल गई, कर लेते हैं बात, हो गया। आप 20 साल पढ़ते रहे, डॉक्टर बन गए, 25 साल पढ़ते रहे, आप इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, जो मर्जी बन गए, दुनिया में ये डिग्री मिल जाती है। अल्लाह के हाँ ये जो डिग्री है ना, ये किस दिन मिलती है? फमन ज़ुख़्ज़िहा नारी वोत खिलल जन्नत फ़क़द फ़ास, सूरत आल इमरान की आयत, नंबर अभी याद नहीं है, बाद में देख सकते हैं आप। फमन पस जो कोई, ज़ुख़्ज़िहा ज़ुख़्ज़ुख़ ऐसे ज़ह 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 हटा लिया गया, अनिन नार आग से, वा और उदखिलन जन्ना जन्नत में दाखिल किया गया, फ़कद पस तय की, फाज फौजिया फ़ायज़ा वही लफ्ज़ है, बस वो कामयाब हो गया, रह गई दुनिया। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, तो दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि मेरा एक पांव जन्नत में और एक जन्नत से बाहर हो, मैं फिर भी ख़ुद को जन्नती नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा दूसरा कदम अंदर जाएगा कि नहीं। इसी तरह गालिबन इमाम अहमद का वाक़या या इमाम मालिक, इन दो में से एक इमाम अपने डेथ बेड पे थे, वो कहना चाहिए मौत की बेहोशियाँ तारी हैं, और एकदम बेहोशी में कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। बच्चों ने उनको कुछ पानी वानी दिया, थोड़ी सी तबीयत संभली, जब थोड़ी सी तबीयत बाद में ठीक हो गई तो बच्चों ने कहा कि ये आप क्या कह रहे थे अभी नहीं अभी नहीं? कहते हैं मेरे पास वो ज़ालिम आया था, अलगरूर धोखे वाला शैतान, और मुझे कहता था इमाम मैंने सारी ज़िंदगी तुझे बहकाने की कोशिश की, तू मेरे हाथ से निकल गया। मैंने बड़ा कोशिश की बचपन जवानी बुढ़ापे तक तुझे कि तू मेरे हाथों में आ जाए, पर तू मेरे हत्थे चढ़ा नहीं। तो मैं उसको कह रहा था कि अभी नहीं अभी नहीं। क्या? कि अभी मेरी सांस की डोरी चल रही है, मैं जब तक इस दुनिया में मैं तुझसे महफूज नहीं हूँ। तिन लजीना कालू रबुल्लास्तकाम। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अलामालु बिल खवातीमी, आमाल अपने खात्मों के साथ हैं, एंड्स। इंग्लिश में आप कहेंगे द थिंग्स द डीड्स आर विद देयर एंड्स। आप 5 नमाजें पढ़ें दिन में या 7 पढ़ें, या आप माशाल्लाह 9 पढ़ने लग जाएं, यानी फ़र्ज़ भी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें, नफिल भी पढ़ें, तहज्जुद भी आ गई, चाश्त भी आ गई, सब, इन सब का इजहार कहाँ होगा? एंड पे, कि आखिर इन सारी नमाजों ने आपको दिया क्या एंड ऑफ द डे? वो फ्यूल जो किसी गाड़ी को चलाने में काम आता है उससे गाड़ी चलती है। देखिए, एक शख्स है गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी दौड़ेगी ना। ये तो नहीं करता कि गाड़ी में गैस तो डालता रहे और अपने ही घर के पोर्च में गाड़ी का इंजन खोल दे, चला ले, 2-4 दफ़ा ऐसा करेगा बैटरी बैठ जाएगी उसकी। मैं और आप इन इबादात से, नमाज से, रोज़ों से, हज से और सदके खैरात से जो एनर्जी ले रहे हैं ना, इसको वी नीड टू फ़फ़िरु इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ और भागो। हम नेकियों में भागते हैं ना, फजर पड़ी हमारा दिल ईमान जहाँ तक भर गया, वाकई अगर फजर हो और उसमें वाकई हमने वो सूरह काफ पढ़ी हो जो अल्लाह के नबी फजर में पढ़ा करते थे, या कोई और सूरह दहर पढ़ी हो, यहाँ तक ईमान आ जाता है पढ़ पढ़ के एक एक लफ्ज़ कुरान का, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। और कभी बंदा पढ़ता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, पूरा ईमान जब जायनमाज तय करें ना, तो आप सोचें कि उस वक्त आप ईमान की टंकी से भरे हुए, जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के उतरते हैं तो वो पूरी भरी होती है। जब गाड़ी की टंकी जो भर गई तो आप उसको चलाएंगे तो फिर ही कम होगा ना। मैं और आप नमाजों से और इबादात से ये जो एनर्जी ले रहे हैं ना, ये ढलनी चाहिए इस्तकामत की सूरत में, नेकियों की सूरत में। कुछ काम करना और छोड़ देना, थोड़े दिन करना और छोड़ देना। हमने सूरत नजम में एक आयत पढ़ी, आपको भी याद नहीं आएगी लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आपको आया करेंगी। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ी आता व अक़दा, दो लफ्ज़ों की आयत थी, आता उसने दिया, वक़दा फिर रुक गया। अक़दा कहते हैं उसके कि कोई बंदा कोई काम करे या पैसा किसी को देने लगे, कोई नेकी करे, फिर एकदम रुक जाए, चलो छोड़ दो, नहीं करता, इसको अक़दा कहते हैं। ऐसी कैफियत कब आती है, चलती चलती गाड़ी कब रुक जाती है? जब बंदा ईमान को लिए बगैर बस रस्मी कलामी इबादत करता है। रात को मैं एक जगह थी, मुझे पहली दफ़ा किसी मस्जिद में पूरे रमज़ान में मस्जिद की तरावीह का मौका मिला। 28वां पारा चल रहा था माशाल्लाह, उसकी आखिरी आयतें थी, फिर उसके बाद 29वां भी शुरू हुआ। मैं लोगों के एक्सप्रेशन देख रही थी कि जो कुरान की आयतें हैं जो पढ़ा जा रहा है, इन सारी बहनों और सीधी सादी बहनें, भोली भाली माइयाँ बुढ़ियाँ और लड़कियाँ भी हैं यंग, तो उनको भी नहीं पता। मैं अपने दिल से सोची थी अल्लाह किस किस को ये आयतें समझ आ रही हैं। तरावी में भी जाके एक ही रोना पड़ा हुआ था कि इनको समझ आ रहा है कि बस ये सुन रहे हैं। कुरान की रूह क्या है कि आप उसको बोलें, सुने, पढ़ें, फिर इस वक्त आपको समझ आएगा। ये जो आपको मैंने स्टेप्स पॉइंट आउट कराए ना, आप अपने ऊपर लेकर, मैं अपने ऊपर लेकर ख़ुद से पूछते हैं। इमाम शौकानी ने तो कह दिया, मैं अपने आप को पूछती हूँ, मैं सवाल बोलूँगी आप लिखें, ये आपके लिए भी एक चेकलिस्ट है, मेरे लिए भी। क्या मैंने अपने आमाल को अल्लाह के लिए खालिस कर दिया? क्या मैं उसकी इताअत पे कायम रहती हूँ? क्या मैंने अल्लाह ताला के अलावा हर चीज़ से एराज़ कर लिया? देखिए, इसका ये नहीं मतलब कि आप जोगी बन जाएँ या राहिब बन जाएँ। एराज़ दिल का होता है, दुनिया में तो हम काम करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे, यानी बस वो जो एक झुकाव की कैफियत थी ना कि अल्लाह के दीन को छोड़कर कुछ और करना, वो नहीं करना। अगला पॉइंट है, क्या मैंने सिर्फ उसी से ताल्लुक जोड़ लिया? अच्छा, लोग कहते सिर्फ उसी से क्यों, ये तो प्रचरस है, ये क्या बात है कि मैं सिर्फ अल्लाह की बनूँ? तो वो भी तो सिर्फ आपका है। इजा साल के बाद या नीफाई नहीं करी कभी आज तक, एक दफ़ा आपके 30-40 साल की ज़िंदगी में ये हुआ कि आपने कहा या अल्लाह, तो आगे से जवाब है चुप करो बिजी हो, आप करें कॉल और पता चले एंगेज्ड है? कभी आज तक हुआ? इससे समझिए, इवन सबको देख रहा है पर आपको कभी नहीं छोड़ता। बात समझिए बात, मैं क्यों सिर्फ उसी से जुड़ूं? क्योंकि वो भी तो मुझसे जुड़ा हुआ है। एक इंसान है, बीवी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बाहर के भी काम करती है, एक को खुश करेगी दूसरा हो सकता है उससे नाराज़ हो, एक काम कर रही है दूसरा छूट रहा है, हमारी कमज़ोरी है, हम इंसान हैं। अल्लाह ताला करता सब कुछ है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, लेकिन इसके बावजूद हर बंदे को नहीं लगता कि मेरा, आपको लगता कि अल्लाह आपका? मुझे लगता मेरा, मुझे बचपन की अभी भी वो फीलिंग याद आ रही है। हम बच्चे थे, मतलब मेरे हाल प्राइमरी से बाद जो स्कूल होता है ना, पांचवी छठी क्लास की बात है, तो हमारी एक टीचर थी, तो वो डिवोर्स थी। उस दौर में एक औरत का डिवोर्स जो ना बहुत बड़ी बात होती थी, कोई गिन सकते थे पूरे ख़ानदान में किस किस को डिवोर्स होती है। आज भी आप गिन सकते हैं माशाल्लाह, अपने ख़ानदान में उंगलियों पर गिना। तो वो सिस्टर कभी ऐसे हमारे घर उनके आना जाना था, तो कोई किसी मौके पर उन्होंने बात की होगी, और हम तो ऐसे ही बस खड़े होकर सुनते थे, हमसे थोड़ी करती थी, हम तो बच्चे थे। तो उन्होंने उस वक़्त कहा कि कोई बात नहीं, मेरा फिर अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो मेरा है ना, यानी वो अपना दुख कर रही थी हस्बैंड का। उस वक्त से मुझे याद आता है, अपने छोटे से लाशौरी तौर पे जहन में ये चीज़ बैठ गई थी, ये क्यों कह रही हैं अल्लाह मेरा है, वो तो मेरा है। अब मुझे किसने सिखाया था? ये फितरत में होता है कि अल्लाह मेरा है। आप नहीं कहते अल्लाह मेरा? आप बच्चों से पूछो, कहेगा मेरी अम्मी, दूसरा कहेगा मेरी अम्मी, तीसरा कहेगा नहीं अम्मी मेरी है, बताएं मामा आप किसकी हैं। बच्चे नहीं लाड करते, आप कहें अल्लाह आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ, ये लाड करके तो देखें। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी दूसरे बंदे से कुछ मांगने की, नज़रें नीचे करें तो पूछें क्या मैंने सिर्फ उसी से ताल्लुक़ जोड़ा है। देखिए गलती है, लोग सिर्फ उसी से ताल्लुक़ जोड़ने को फिर बुरका पहनना कहते हैं, दाढ़ी रखना कहते हैं, शलवार टखनों से जी मौलवी बन गए, अब सिर्फ अल्लाह वाले हो गए। नहीं, सब कुछ लो, कुछ लोग हैं हमारे पाकिस्तान में कल्चर है, तो वो उनका एक पेट जुमला है, ठंडे ठंडे लो दीन को, बड़े प्यार से बोलते हैं, उनका एक्सेंट बड़ा प्यारा है, मैं तो वैसे नहीं बोल पाती, दीन को ठंडे ठंडे लो, इतना ना सर पे चढ़ाओ, कुछ दुनिया का भी करो, ये कहते हैं लोग। अब बताइए इससे बड़ी मलामत और क्या होगी, कि यानी दीन में जो सारा वक्त लग गए वो तो गए काम से, उनके तो होने ही कोई नहीं। अपने आप को और किसी को ये मशवरा अगर देते हैं तो तौबा कर लें। आप बोलो बेटा अगर 22 घंटे दीन को दिए हुए ना, तो 24 दो, फिर देखो वो कहते हैं ना तमाशा अहले करम देखते हैं, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं कलाम आखिर। ये ऐसे ही नहीं लोगों ने बातें की हुई, ये शेर ऐसे नहीं बने हुए, कुरान की तो आयतें मौजूद हैं, जब तक पूरे उसके नहीं बनेंगे वो पूरा आपका नहीं बनेगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो अल्लाह का मामला आपके साथ है, जो आपका अल्लाह के साथ है, वो अल्लाह का आपके साथ है। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा मुझे पता चल जाता है कि अल्लाह मुझे कब याद करता है। कहा तो बस तख़्वार, ऐसी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपको कैसे पता कि अल्लाह आपको इस वक्त याद कर रहा है? कहा मुझे पता लग जाता है। कहा कैसे लगता है? कहा जब मैं अल्लाह को याद करता हूँ तो मुझे पता वो भी मुझे याद कर रहा है, क्योंकि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो ये जो चीज़ है ना, सिर्फ उसी से जुड़ना, ये चीज़ इस दुनिया को जन्नत बनाती है, रुके हुए कामों को पूरा करती है, मुश्किलात को आसानियों में करती है। आप तो हैरान ही रह जाते हैं, आपकी तो ज़ुबान नहीं किसी के आगे खुलती, और अल्लाह आपका वो काम करा देता है। फिर अगला सवाल पूछिए, क्या मैं दुनिया से बेरग़बत हो गई हूँ? मुराद ये नहीं है कि दुनिया छोड़ना, रग़बत नहीं रही। खाते भी हैं, पीते भी हैं, पहनते भी हैं, उड़ते भी हैं, खुश भी रहते हैं, लेते भी हैं, देते भी हैं, पर वो जान नहीं निकल जाती दुनिया की चीज़ का सोचकर। हक्का नहीं पड़ता किसी शोकेस में कोई चीज़ देखी गुजरते हुए, हाय मैंने लेनी है, हाय कितनी प्यारी, ये नहीं कभी हुआ। सोने जैसी चीज़ को आपके सामने रहे, खुश होंगे, पसंद करेंगे, मज़ा भी आएगा, लेकिन वो जान नहीं जाती, चीखें नहीं निकल जाती ऐसी ऐसी चीज़ों को देख कर, हाय मैं मर जाऊँगी अगर मुझे ये ना मिला। एक सिस्टर की बात याद आ गई, किसी को फरमाइश कर रही थी अपने भाई को, किसको कहने लगी मुझे ऐसा जोड़ा ला कर दें, ऐसा जोड़ा ला कर दें जो मुझे देखे बेहोश हो जाए। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जिनको उन्होंने फरमाइश की। उन्होंने कहा बासुन चली, जब हर बंदे ने उसको देखे बेहोश ही हो जाना है तो तेरी तारीफ कौन करेगा। लेकिन बंदे के दिल में होती है ये ख्वाहिश होती है बंदे की, क्या करें, ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इंजॉय करें, मज़े में रहें, खुश रहें, खुश रखें, अच्छे लगें, अच्छे से घर बनाएं, बच्चों को अच्छी तरह डील करें, हस्बैंड के लिए अच्छी तरह तैयार हों, जो करें मज़ा करें, नबी को देख लें वो क्या करते थे, बस वो करें। लेकिन दिल में वो नहीं है, दिल बेरग़बत है, सामान बांधा हुआ है, किसी वक्त जाने को दिल पड़ेगा। आप कभी नोट करेंगे कि जब कभी कहीं जाने के लिए आप सामान बांध लेते हैं, मतलब एक घर से दूसरे घर मूव होना है, तो कुछ माशाल्लाह बहुत ही जल्दबाज सिस्टर्स होती हैं, वो एक हफ्ता महीना पहले ही सारे वो चमचे कफ़गीरें बंद कर ले, फिर हमसायों को कहेंगी देना ज़रा चमचा, ऐसा होता है ना। या कहीं पाकिस्तान जाना हो, कई लोग वो कहते हैं मेरा सूटकेस तैयार है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये बात अपने हिसाब में ना, कहते हैं मैंने तो एक महीना पहले ही सूटकेस तैयार कर लिया था, हाय मैं मर गई। एक महीना पहले के तो ये एक महीना पहनेंगी क्या, इसका तो इनके पास इतने एक्स्ट्रा कपड़े हैं कि इन्होंने एक महीने के लिए तैयारी कर ली है। कुछ बेसिक्स होती हैं वो तो आपको आखिरी वक्त में रखनी पड़ती हैं। तो बहरहाल बेरग़बती हो गई है, और ये अगर नहीं हुई तो गम ना करें, हो जाएगी, फिक्र ना करें। फिर अगली बात है, क्या मेरी आखरत में रग़बत हो गई है? देखिए अब हमने कहा रंगन जाना है ना, तो ख्वाबों में भी आ गया शुरू, रग़बत लग गई है, मैं अपनी आदत बताऊं, बड़ी पर्सनल है लेकिन आपको छोटी सी ऐसी बेकार बात ही है, वैसे कोई इतनी फ़ायदे की नहीं है, लेकिन ये रग़बत कैसे लगती है इसको दिखाती हूँ। ये देखिए आप सबके फ़ोन में ये है ना वेदर वाला आइकॉन होता है सब फ़ोन, मैंने जहाँ ये खोला तो गैर आंगन ही आया है। 11 टेम्परेचर है वहाँ, जितनी दफ़ा ओस्लो का देखती हूँ ये भी देखती हूँ, बारिश हो रही है 11 टेम्परेचर है, रात को 7 हो जाएगा, इस पूरे हफ्ते का भी लिखा हुआ, जब आपने जाना है वो भी बता देगा। ये रग़बत होती है, कभी इसमें जन्नत का भी टेम्परेचर होता मैं डालती हूँ, और मेरी आदत है मैंने जहाँ भी जाना हो उसके डालती हूँ, इसलिए मेरा ये ना देखा करें आप, ताकि आपको पहले ही ना पता चल जाए मैंने कहाँ जाना है, उधर की डालती हूँ, जो मेरे ट्रिप्स होते हैं हर जगह का डाला होता है नेक्स्ट, और डालती भी तरतीब से हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है जहाँ जाना है उधर रग़बत हो जाए। तो क्या मेरी आखिरत पे रग़बत हो गई है? कभी मैंने आखिरत के घर को सोचा, मेरा घर कैसा होगा, मैं वहाँ क्या पहनूंगी, मैं वहाँ कौन सी क्रॉकरी यूज़ करूँगी? करा करें बातें अपने बच्चों से भी, करें करके देखें, दिल करेगा जल्दी भागो, सामान बंध जाए तो दिल ही नहीं लगता। कभी आपने एक और मिसाल याद आ गई, मिसालें बहुत याद आती हैं बीच में, अल्लाह ही मुझे माफ़ कर दे। कभी ऐसा हुआ कि आप पाकिस्तान से आ रहे थे और आपके घर वाले आपको कह रहे हैं प्लीज़ एक हफ़्ता और बढ़ा लें, प्लीज़ और बढ़ा लें बढ़ा लें, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकती, ये है वो है दिस एंड दैट, और इतने में क्या हुआ, मज़े से आप गए और आपकी फ़्लाइट मिस हो गई, पता चला बुध की फ़्लाइट नहीं मिली, अब हफ्ते को लेनी पड़ेगी। सच बताएं वो 2-3 दिन आप इंजॉय करते हैं, कतन नहीं करते। कई लोग तो एयरपोर्ट पे फ्लाइट मिस होती है ना तो फिर उसे अगले दिन की लेते हैं, घर वाले बड़े खुश होंगे, माँ मज़ा आ गया, ओ वो हो हा, आपको मज़ा नहीं आता, टूथपेस्ट तक आपका तो बैग में पैक है, नाइट सूट तो है ही कोई नहीं, अब रात किधर रहूँ क्या करूँ, खोलें बंद करें सामान उठा कर फिर घर जाएँ, इधर एयरपोर्ट पर छोड़ दो कोई, इसे अगली फ़्लाइट ले लेते हैं, है ना। बस ये है असल में दुनिया से बेरग़बती और आख़रत की रग़बत, और ये आपको इस दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, ये आशनाई पैदा हो जाएगी ना फिर बड़ा मज़ा आएगा। और आखिरी चीज़ देखिए, कलमा शहादत पर मरते दम तक कायम रहना, 7 चीज़ों का नाम है इस्तकामत। जहाँ कमी है इंशाल्लाह उसको पूरी कर ले, कमी बेशियाँ दूर करने ही तो हम बैठे हैं, अभी हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम मायूस नहीं हैं, कोई बात नहीं, इन 7 में से अभी 2 भी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अल्लाह जी मैं फिर भी आपसे दुआ करती हूँ कि आप मुझे इस्तकामत दें, दुआ भी है ना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत नए नए लोगों को जिस चीज़ की होती है वो इस्तकामत की, मैं आप अपनी कोशिशों से इस्तकामत नहीं रख सकते, दुआएं मांगनी पड़ती हैं, आज से ये दुआ तो मांग ही लीजिए ना, छोटी सी है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, ये सूरह बकरा की आखिरी आयत है ना, उसके अंदर ये दुआ है। इन सब चीज़ों का नाम इस्तकामत है, जिसमें ये बातें पाई जाती हैं उसके लिए फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। तो मुझे पता चल गया ना कि पे मेरे पे क्यों नहीं नाजिल होते, मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिलती, मुझे वो ट्रैंक्विलिटी क्यों नहीं मिलती, मेरे अंदर वो ठहराव क्यों नहीं है, मैं क्यों छोटी सी बात पे हाइपर हो जाती हूँ, मेरा क्यों सर खोलने लगता और मेरा क्यों खून उबलने लगता और मेरी क्यों रगें तन जाती हैं और मुझे क्यों गम पड़ जाता है कि हाय मेरा मुस्तकबिल क्या बनेगा मेरा। सब कुछ अल्लाह पे डाल के आराम से बैठ जाए। फिर उसके बाद देखिए अगली हदीस में क्या कह रहे हैं, हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, ए अल्लाह के रसूल मुझे ऐसी बात बतलाएं कि आपके बाद किसी से मुझे पूछने की ज़रूरत ना रहे। आपने फरमाया, कुल आमंतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम, कह मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर इस पर इस्तकामत इख्तियार कर। चलिए अब आगे क्या, कमाले सब्र और इस्तकामत इख्तियार करना सआदतमंद और अजीम लोगों का काम है, और ये इसी मालिक कायनात की मदद और ख़ास फजल से मुमकिन है। नोट करें इस जुमले को, इसके लिए वाकई अल्लाह से मदद मांगनी पड़ती है कि अल्लाह मेरे कदम ना फिसलें, और वो दुआ भी है ना सूरह आले इमरान में कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, शायद आयत नंबर 10 है, बिल्कुल शुरू कर रुकू है। एक अल्लाह वाला आग के अंगारों पर लेटा हुआ है और इसकी ज़ुबान पर अपने खालिक की तौहीद का तराना है, और ये खुशबख्त कितने कड़े हालात में भी अपने मालिक की याद में मगन है। कोई अल्लाह वाला खून में लथपथ है और तेज़ धार आला इसके जिस्म में पेवस्त है, लेकिन वो कसम खाकर कहता है कि मैं कामयाब हो गया। आपको शायद पता चल रहा है, नहीं ये सहाबा के कौल है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया रब्बे काबा की कसम। एक सहाबी की यहाँ तीर लगा था, रगे गर्दन कटी, बड़े खुश थे, कहते मेरे ख़ानदान वाले मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। ये वो दौर था कि जब जो भी कोई ईमान लाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते दूसरों को ना बताओ भी, छुपा लो बस, खामोश रहो, انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری قوم تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میں سو رہا ہوں نا تو مجھے جگاتی نہیں ہے کہ میں ڈسٹرب نہ ہوں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، کہ اچھا چلو جاؤ پھر. وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا لوگوں میں مسلمان ہو گیا ہوں. تیر نکالا ایک کسی نے مارا اور خون کا فوارہ نکلا اور زبان پہ یہ لفظ فست بے رب بھی کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ آگ کے انگاروں پہ کون لٹایا جاتا تھا؟ عہد عہد. یہ تو دیکھیں یہ ہے استقامت، کہ جہاں کوئلے اور انگارے آئیں تو حضرت بلال یاد آ جائے، اور جہاں ایک ٹانگ اونٹ کے ساتھ باندھنا اور دوسرا دوسرے کے ساتھ باندھنا آ جائے تو بی بی سمیہ یاد آ جائے اور عمار بن یاسر یاد آ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کردار بن گئے، ان کے نام کے ساتھ ٹھپے لگ گئے. کتنے کو دن کی قربانیاں تھیں، نام دیکھے، اور وہ سب بعد میں دین کی بہاریں بھی لوٹ کر گئے. یہ خوشبخت کتنے کڑے حالات میں بھی اپنے مالک کی یاد میں مگن ہے، اور کوئی اللہ والا خون میں لت پت اور تیز تھار آلہ اس کے جسم میں پیوست ہے، لیکن وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، تو کبھی کہنے والا کہتا ہے میرے رب میرے لیے یہ دنیاوی غم اور تکلیفیں اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مجھے تو تیری جنت کا انتظار ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. فرعون نے جب بی بی آسیہ کو قید کیا تھا نا تو کہتا تھا آسیہ آ جا، محبت کرتا تھا، کوئی لڑائی تھوڑی، کوئی پہلے بروکن فیملی تھوڑی تھی کہ اب اللہ کا دین بیچ میں آ گیا تو بہانا بن گیا. جی جب سے دین آیا تب سے تو بس گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی. یاد رکھیے جن گھروں میں دین کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے گڑبڑے پہلے ہی ہوتی ہیں، وہ صرف دین بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے. اچھے تعلق رکھے ہوں گھر والوں سے تو دین تو حرس بنتا ہے. لیکن حضرت آسیہ نے کیا چوز کیا؟ کہا تجھے خدا نہیں مانوں گی، شوہر تھا اب نہیں ہے، تو کفر پہ ہے، میں اسلام پہ ہوں. اور پھر وہاں دعا کی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، سورۃ تحریم میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ میں اکثر سوچتی ہوں ان کو درد نہیں ہوتی تھی. دیکھیں نا ہمیں تو ایک سوئی بھی چپ جائے کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، بلال کو درد نہیں ہوتی تھی. اور ایک صحابی تھے کہ جب اسلام قبول کیا نا تو بیٹھتے تھے، تو ایک دن صحابہ سارے جیسے دوست بیٹھتے ہیں نا، آپ لوگ بھی کبھی سارے اینڈ پہ آپس میں ٹیم کے لوگ بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں نا، تو کبھی صحابہ فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے چلو دوستو ہمیں اپنے قبول اسلام کی باتیں سناؤ، تم سناؤ تو صحیح. ایسی باتیں چل رہی تھیں، ایک صحابی تھے ان سے بھی کسی نے کہہ دیا، تو انہوں نے کہا میں سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا. قمیض اٹھا کر پیچھے سے دکھائی تو جسم کے اندر کھڑے پڑے ہوئے تھے. کیسے؟ کہ ان کو جلتے کوئلوں پہ لٹا کر اوپر سے ان پہ بوجھ رکھتے تھے تو وہاں سکن میں یوں پڑ گیا تھا. ایک صحابی تھے بچے ان کے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلتے تھے کریتے تھے، درد نہیں ہوتی تھی. ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ اب پڑھیے وجہ کہ ہوتی کیوں نہیں، دین کے رستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ کیوں نہیں لگتی ہمیں، کس کو نہیں لگتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے خاص سکینت لے کر اترتے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، وہ بے ہوش اور بے غم ہو جاتا ہے، اس کا سارے کا سارا جھکاؤ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے، اور یوں وہ دنیاوی غموں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی. دیکھیے آپ میں سے جو کوئی میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہے یا کم از کم کوئی نہ کوئی بیمار تو کبھی ہوا ہی ہوگا، کبھی بیمار ہوئے آپ؟ دیکھیے دکھی چہرے. کبھی اللہ نہ کرے بڑی بیماری، چلے میں اس کو کلیئرلی بولتے، کبھی آپ میں سے کسی کا آپریشن ہوا؟ ہوا ہوگا نا. آپریشن کی درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں فیل ہوتی مریض کو؟ جی بولیے. بے ہوش کرتے ہیں، بس یہی سننا چاہ رہی تھی. اب یہ جملہ سمجھیے، جسم کٹے، اندر سے دل کاٹ رہے ہیں، انتڑیاں نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، تو زندہ انسان کے ساتھ کری جائے تو اس کو چھوڑیں، وہ اس کی درد سے ہی مر جائے. اس سے پہلے بندہ ایک ہوش گم کرتا نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انتھیسیا دیتے ہیں، انتھیسیا دیتے ہیں. جب دنیا کے لوگ دنیا کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں بے ہوش کرتے ہیں نا تو ہمیں اس درد کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں نا وہی کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، بیس کر دیتے ہیں. کبھی تو آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، اتنے مشکل وقت گزر گئے میرے اوپر، اتنی بڑے بڑے حالات گزر گئے اور میں بچ کے آ گئی، اور اس وقت آپ کو کوئی نہیں لگتا، آپ سوچیں تو جان نکل جائے گی. کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں نا تو آپ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کو اتنا نہیں ڈر لگ رہا ہوتا، لیکن اوپر جا کے دیکھیں نا نیچے ہائے یہاں سے آئے ہیں تو جان نکل جاتی ہے. ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف سمندر ہے، جان نکلتی ہے. تو یاد رکھیے زندگی کے کٹھن لمحوں میں اگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا نا تو یہ فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوشی کا بھی تو اثر ختم ہوتا ہی نا, پھر تھوڑے بہت درد تو جاگتا ہی ہیں. اسی طرح دعا کریں اللہ ہمیں یہ درجے کی استقامت دے دے, میں نے نہیں ہٹنا, بارش ہو رہی ہے میں نے نہیں رکنا, آندھی آ رہی ہے میں نے نہیں رکنا, طوفان ہے نہیں رکنا, برف گر رہی ہے نہیں رکنا, گرمی ہے نہیں رکنا, سواری ہے نہیں رکنا, پیدل چلنا پڑے میں نے نہیں رکنا, بچہ بیمار ہے میں نے نہیں رکنا, میں بیمار ہوں میں نے نہیں رکنا, مجھے اس ایک گھنٹے میں کوئی 1000 کرون کی بھی آفر کر دے کہ آؤ میرے پاس 1 گھنٹہ کام کرو, میں 1000 کرون دینے کو تیار ہوں, میں نے نہیں رکنا, میں نے نہیں رکنا. ضد کریں, یہ استقامت جو ہے نا یہ ضد کا نام ہے. کس چیز کی ضد؟ میں نے اللہ کے رستے سے نہیں ہٹنا, میں نے اللہ کا بننا. اور دیکھیں ابراہیم کی کسی ایک نماز کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں. کبھی سنا صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے, آیت کریمہ پڑھتے تھے, کوئی ہے ان کا ذکر؟ کوئی ابراہیم کی کوئی اور خوبی مجھے بتائیں جس کو آپ اور میں عبادت کے نام پہ گنتے ہیں, کوئی ہے؟ کتنے حج کیے؟ جہاں بات ہے اس قال الہ رب اسلم قال اسلم تو رب العالمین, اور کر کے پچھتائے نہیں. یہ بھی بات ہے, بیٹے کو چھوڑ آتے جنگل میں, بیوی کو, گھر آ کے روتے کیا غم, کیا دیکھو ذرا اللہ نے کیا لے لیا مجھ سے کام, آج بھی مجھے ہی کرنا ہے, آج بھی میں نہیں کرنا ہے, میں نہ کروں تو کیا ہوگا, کوئی اور نہیں میری جگہ یہ کام کر سکتا, پھر نہیں ہوتا, پھر بے غم. آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے, آپ دیکھیں آپریشن کے بعد صحت بھی تو مل جاتی ہے نا, آپریشن کے جو درد ہے نا وہ لوگ برداشت کرتے ہیں, کیوں کہتے ہیں ایک دفعہ کا درد ہے پھر بعد میں ہمیشہ کی ٹھیک ہے, خیر ہو گئی. 4-6 دن کے بعد آپریشن سٹیچز صحیح ہو جاتے ہیں, بندہ ٹھیک ہوتا ہے. ایک دفعہ میں اور آپ اللہ کو یہ دکھا دیں کہ اللہ میں آپ کی ہوں, صرف 2-4 ٹیسٹ دینے پڑیں گے آپ کو. ایک دفعہ شوہر ناراض ہو جائیں گے, کسی ایک دفعہ بچوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی ایک دفعہ دوستوں کا جھٹکا پڑے گا, کبھی ماں باپ کا ہوگا, کبھی مالی کوئی پرابلم آ جائے گی. بس یہ ہر رشتے میں اور ہر روپ میں سے ایک دفعہ گزر جائیں, ایک چکی میں سے گزر جائیں, ادھر جا کے کھڑے ہو کے کہ خدا حافظ میں بچ گئی, پھر اس کے بعد زیادہ نہیں کرنا پڑتا. دیکھیں بلال کو ساری زندگی کانٹوں پہ لڑائے گئے, وہی بلال جو پتھروں پہ لٹائے جاتے تھے وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے, کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, عزتیں بھی ملتی ہیں. پھر وہ زخم بھرتا ہے اللہ کہ آپ کو لگتا ہے کبھی یہاں چوٹ ہی نہیں لگی تھی. ڈاکٹرز تو پھر بھی سٹیچز لگائیں تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں نشان چھوٹ ہی جاتا ہے نا. اللہ جب آپ کو استقامت دے دیتا ہے جو دین کے اوپر یا اللہ کی بات کو مان کے آپ کو مشکلات آتی ہیں, اس کے نشان تک مٹا دیتا ہے. بلکہ حضرت ایوب کی کہانی آپ سن چکے ہیں, اللہ نے ان کو دوبارہ جوان بھی کر دیا, بیوی بھی جوان کر دی, بچے فوت ہو گئے, نئے بچے بھی دے دیے, اور سونے کی ٹڈیاں برسیں. اور جب برسیں تھیں تو کیا کیا تھا انہوں نے, 2-2 ہاتھ سے پکڑنے لگے. تو کہا یوب صبر صبر, آپ میرے صابر بندے ہیں. کہا اللہ یہ تیرا انعام ہے, اب میں کوئی صبر نہیں کروں گا, یہ مجھے میرے صبر پہ تو دے رہا ہے, میں 2 ہاتھ سے تیری رحمتیں لوں گا. پھر یوں مومن دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں اس کے, دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی, شرط ایک ہے کہ استقامت ہو. استقامت اختیار کرنے والے کو تسلی دیتے ہیں, وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح, آپ آج کے دور میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جس کو خوف اور غم نہیں. خوف کیا ہے؟ ڈپریشن. اور غم کیا ہے؟ سٹریس. آج کے دور کے 2 تحفے ہیں, سٹریس ڈپریشن. بچے بھی کہتے ہیں آئی ایم ڈپریسڈ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ہیپی, آئی ایم سیڈ. کبھی آپ نے اپنے بچپن میں لفظ سیڈ سنا تھا اپنے بارے میں؟ دکھ کا نام سنا بچوں نے؟ گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بچوں کو کیا لگے؟ آج بچے بچے کے چہرے پہ اداسی ہے. اللہ کہتے ہیں جب استقامت ہوگی نا تو بے خوف اور بے غم, لا خوف علیہم, اس کا سارے کا سارا جھکاؤ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے. یہ سارے کا سارا ہی مشکل لگتا ہے ہمیں, اور مدد بھی سارے کے بعد ہی آتی ہے. یہ بھی بتا دوں, کسی کمپنی میں آپ چلے جائیں وہ آپ کو ہائر کر لیں, جب تک سارے کے سارے آپ ان کے ساتھ نہیں لگیں گے, فل ٹائم آپ کی ڈیڈیکیشن ان کے ساتھ نہیں ہوگی, تب تک وہ کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے. بھکار کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی جگہ پہ آیا ہوتا ہے, اس بندے کو کوئی رکھتا ہے؟ کوئی نہ آئے گا تو آپ کو بلا لیں گے. اس طرح میرا آپ کا کام چلتا ہے اللہ کے ہاں, چلو کوئی نہیں تھا کرنے والا تم کر لو. یہ جو آج آپ اور میں دین کے کام کریں, پتہ نہیں بھکار میں ہی کر رہے ہوں, کوئی نہیں تو پھر اللہ کہتا اب تم ہی کر لو, اور تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ میں استقامت پہ جم جائیں گے پھر ہماری پکی جاب, کام ہو نہ پیسے ملیں گے آپ کو. छुट्टियां तो वो पैसे देंगे आपको, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपका जो जॉब है वो करें। वो कहते जी आप हमारे पक्के मुलाजिम हैं, आप जाइए, आपको नहीं बुलाया हमने, आज कोई काम नहीं है, छुट्टी करें, आप विकार पे थे या विकार या जो भी आप कहते हैं। याद रखिए पूरा बने, इसमें जो मज़ा है ये और किसी चीज़ में नहीं। और हम सोचते हैं ना इसमें पूरा बनने में दुनिया जाती है, देखे जुमले आपके सामने बुक में लिखे हुए हैं कि यूं वो दुनियावी गमों से बेनियाज और बेपरवाह हो जाता है। आंधियाँ भी चल रही है ना, उसको परवाह नहीं रहती। ये तो नहीं कह रहा अल्लाह ताला के मोमिन को कोई मुश्किल नहीं आती, वो बीमार नहीं होता, उसके बच्चे नहीं रोते, उसका मियाँ हर वक्त उसके साथ खुश रहता है, ये नहीं कहा जा रहा। कहा क्या जा रहा, बेपरवाह बेनियाजी, केयरलेस, ठीक है हो जाए, फिर इतना क्यों दिमाग पे बोझ बनाओ। वो छोटे छोटे जुमलों को हर बात को दिमाग पे भी तो नहीं लेता ना। हमारा ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, हम हर बात को दिमाग पे लेते हैं, दिल पे ले पीछे डाल दे, कुछ चीज़ें लेने की नहीं है। किसी का एक बड़ा अच्छा जुमला याद आ गया, किसी ने कहा कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ, तो उसने कहा ये लेने वाली नहीं देने वाली चीज़ है। ये कोई लेने वाली चीज़ है, दो दूसरों को, तो दूसरों को भी ना दें। मैं आपको नहीं कहूँगी कि दूसरों को टेंशन दें, ना लेने वाली चीज़ है ना देने वाली चीज़ है, इसको फेंक दें, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब में इन लोगों को मज़ीद तसल्ली दी है, फरमाया ये सूरत अल-अहक़ाफ़ में आयत 13 बिल्कुल उसी मज़मून की आयत है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इस पर जमे रहे, अल्लाह इसकी तौफीक दे, तो इन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमज़दा होंगे। ये कब जमना होता है, घर में खुशी आ जाए तब भी जमना है, गम आ जाए तो भी जमना है, मेहमान आ जाए तो भी जमना है, आप कहीं चले गए तो भी जमना है, फेरिए पे गए हैं तो भी जमना है, आप अमेरिका चले गए डिज्नीलैंड देखने गए वहाँ भी जमना है। ये नहीं है कि अब छुट्टियों पर हैं तो नमाज़ों की भी छुट्टी है और हर मामले की छुट्टी नहीं। एक जगह जैसे है ना, हर जगह मक्का में जाके जो रूटीन आपकी हो वही आपकी रूटीन नॉर्वे में, वही रूटीन आपकी अमेरिका में, वही जाके पाकिस्तान में भी है। हम तो यहाँ से पाकिस्तान चले जाएँ तो हमारी रूटीन बदल जाती है, इल्ला माशाल्लाह, कितना बाज़ मुश्किल हो जाता है वहाँ जाकर अपना ईमान बचाना, हर वक्त ही कोई ना कोई बंदा आपके ऊपर मुसल्लत हो रहा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, अगली आयत है उलाइक असहाबुल जन्नति खालिदीन फीहा जज़ाम बिमा कानू यअमलून। अल-अहक़ाफ़ 14 है, ये अहले जन्नत हैं जो सदा इसी में रहेंगे इन अमाल के बदले में जो वो किया करते थे। तो एंड ऑफ द स्टोरी क्या निकला, कि इस्तकामत वालों की खुशी का क्या कहना। ये है कमेंट मेरी तरफ से, और इमाम इब्ने तैमिया का भी एक कमेंट दे दूँ आपको, तक हक़ कहने पर लोगों ने उनको जेल में डाल दिया था, और जिन्होंने भी हक़ पेश किया ना लोगों ने, एक तो उनके खिलाफ़ प्रोपेगंडे बहुत किए हैं, लोगों को उनके खिलाफ बहुत भड़काया है, और दूसरी बात एक उनको सताया बहुत है, तो जेल में डाल दिया लोगों ने इनको। बहुत बड़े इमाम थे, आप उनकी बुक्स तो पढ़े। तो वो क्या कहा करते थे, कहते हैं कि इन न जन्नती माइया, कहते हैं बेशक मेरी जन्नत तो मेरे साथ है, जेल में भी डालकर इन्होंने मुझे परेशान कोई नहीं किया। इनकी कई किताबें वो हैं जो जेल में लिखी, मज़े में थे। हज़रत इब्राहिम के बारे में एक कौल मारूफ है, कहते थे कि वो आग में गुजारे हुए दिन, गालिबन 3 दिन तक आग में अल्लाह ने उनको रखा था, वो आग में गुजरे हुए दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। ये बात समझ में नहीं कोई आती, मुझे आपको नहीं आएगी, इस तकामत आले को आ जाएगी। कहा वो कैसे, कहा सुबह शाम ऊपर से सलाम आता था, ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, बादलों के फरिश्ते ने आके वो इब्राहिम से कहा था बारिश बरसा दो ताकि आग बुझ जाए। तो हज़रत इब्राहिम ने पूछा आपको अल्लाह ने ये कहा है, कहा नहीं मैं तो आपकी मोहब्बत में कह रहा हूँ, आप आग में जल रहे हैं तो ऊपर से बारिश बरसा दो। कहा अगर अल्लाह ने नहीं कहा ना तो कोई ज़रूरत नहीं कहने की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रे ताइफ में क्या कहा था, जब जिब्राइल ने आके कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो दोनों पहाड़ों को यूं मस करूँ कि ये ताइफ वाले बीच में मसल जाएँ, कुछ भी ना रहे अंदर, का अल्लाह ने कहा, कहा नहीं अल्लाह ने नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ, कहा नहीं रहने दो इनकी नस्लों में से शायद कोई ईमान पे आ जाए। तो ये जो अल्लाह के नाम की तकलीफ़ें होती हैं ना, ये बड़ी मुबारक होती हैं। हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन क्यों याद रहा, क्योंकि फ़रिश्ते उतरे हुए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में वही भेजी गई थी कि फ़िक्र नहीं करो, एक दिन आएगा इन भाइयों का बुरा अंजाम, तुम खुद देखोगे, या इनको अपनी खूबी दिखाओगे तो आपको कुछ सताए, खपाए, रुलाए, परेशान करे, दुखी करे, आप अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें, इसमें कोई खैर है, इसके बाद कुछ है। और अपना एक सिंपल सा टेस्ट है, जैसे वो शुगर चेक करते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं ना, ईमान टेस्ट यही है। दो वक्त चेक कर सकते हैं आप, खुशी आती है तो मेरे दिल की क्या हालत हो जाती है, उछलती हूँ, कपड़ों से बाहर आती हूँ, तड़पती हूँ, बेचैन होती हूँ, कूदने ही लग जाती हूँ, सबको अपने आप को दिखाने ही लग जाती हूँ, और गम आता है तो फिर क्या हाल होता है। बस ये दो वक्तों में अगर आप कूल हैं, स्माइली हैं, रिलैक्स्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, तो बस ये फ़रिश्तों का नज़ूल है। फरिश्ते आते हैं तो पता चलता है आपको, तिलावत सुनते हैं और अपने लिए दुआ करेंगे साथ साथ कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, और साथ ही छोटी छोटी चीज़ें हमारे रास्ते की रुकावट जो अल्लाह ताला उनको दूर कर दे।
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم یہ بات یعنی استقامت رکھنا اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا یہ نصیب والوں کے سوا کسی کو نہیں سکھائی جاتی تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے